भारत में नगरीकरण। सन 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की 21.7 करोड़ जनसंख्या विभिन्न साइज के 3,697 नगरों में निवास करती थी। भारत की नगरीय जनसंख्या चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के अन्य राष्ट्रों से बहुत अधिक थी। इस प्रकार मात्र चीन 25 करोड़ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका 17.7 करोड़ की नगरी जनसंख्या भारत के बराबर थी। सन 1991 में भारत के नगरों की औसत जनसंख्या 65,277 थी। यद्यपि भारत की मात्र 26.1% जनसंख्या नगरीय थी, पर देश का नगरीय आधार विशाल था। 20वीं सदी के प्रारंभ में भारत की नगरीय जनसंख्या मात्र 2.5 करोड़ थी। तब से नगरीय जनसंख्या 8 गुना से भी अधिक हो गई है। देश में नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर एक दशक से दूसरे दशक में परिवर्तनशील रही है। सन 1931 तक नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर लगभग प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर के बराबर थी। अतः सन 1931 नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से एक विभाजक बिंदु उभरता है। यदि प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रति दशक 25% मान ली जाए तो नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर सन 1931 के पश्चात उससे बहुत आगे हो गई। सन 1931 के पश्चात मात्र 1951-61 के दशक को छोड़कर नगरी जनसंख्या विकास दर सदा बढ़ती गई। सन 1951-61 की अवधि में वृद्धि दर घटने का कारण नगर की परिभाषा में परिवर्तन था। सन 1961 की जनगणना में नगर की परिभाषा भी परिमार्जित की गई तथा उसके क्षेत्र को सीमित कर दिया गया। फलस्वरूप भारी मात्रा में नगर अवर्गीकृत हो गए। पुनः आगे के दशकों में वृद्धि दर में तेजी आई और जनगणना दशक 1971-81 में वृद्धि दर उच्चतम अर्थात 46% रही। अंतिम 1981-92 के दशक में नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर महत्वपूर्ण रूप से कम होकर 36.2% रह गई। इसके मुख्य कारण हैं गांव से नगर प्रवास में कमी तथा प्राकृतिक वृद्धि में भी कमी। यद्यपि देश में नगर का औसत साइज लगभग 65,000 था, फिर भी देश की 65% से भी अधिक जनसंख्या प्रथम वर्ग के नगरों में थी, जिनमें प्रत्येक की जनसंख्या 1,00,000 से अधिक थी। ऐसे कुल नगरों की संख्या 3,000 थे, जहां देश के प्रति 10 नगरीय व्यक्तियों में से 6 निवास करते थे। 50,000 से 1,00,000 वाले द्वितीय वर्ग के नगरों में कुल नगरीय जनसंख्या की 10.95% जनसंख्या थी, इनकी संख्या 345 थी। भारत में नगरीकरण की दृष्टि से मिजोरम का स्थान प्रथम है। गोवा व महाराष्ट्र का स्थान मिजोरम के पश्चात है। महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या की लगभग 39% जनसंख्या नगरी केंद्रों में निवास करती है। महाराष्ट्र के नगरी केंद्र में देश की कुल नगरी जनसंख्या का 14% भाग है, जो और किसी भी राज्य की तुलना में अधिक है। अन्य उच्च नगरी राज्य तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल और मणिपुर हैं, जिनमें नगरी जनसंख्या का अनुपात राष्ट्रीय औसत अनुपात 26.1% से उच्च है। इसके विपरीत हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा राज्यों में नगरी जनसंख्या का अनुपात राष्ट्रीय अनुपात के आधे से भी कम है। सभी संघीय राज्यों में मात्र दादर एवं नगर हवेली को छोड़कर नगरी जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय अनुपात से उच्च है। दिल्ली और चंडीगढ़ में नगरी जनसंख्या का अनुपात 90% है। इस तरह संघीय राज्य क्षेत्र मुख्यतः नगर आधारित क्षेत्र हैं। भारत के नगरीकरण की कुछ विशिष्ट लक्षण इस प्रकार हैं। पहला, भारत में नगरीकरण का इतिहास अति प्राचीन है, जिसका प्रारंभ लगभग 2500 वर्ष ईसा पूर्व हुआ। उस काल में बहुत सी नगरी बस्तियां को सिंधु घाटी क्षेत्र में विकास था। दूसरा, वर्तमान सदी में नगरीकरण का विकास भिन्न भिन्न दशकों में भिन्न भिन्न घटकों से संबंधित था। 1901-11 के में अकाल व प्लेग, 1911-21 के दशक में इन्फ्लुएंजा महामारी, 1921-31 के दशक में कृषि अवनमन, 1931-41 के दशक में युद्ध, 1941-51 के दशक में राष्ट्र विभाजन, 1951-61 के दशक में नियोजित विकास, 1961-71 में के दशक में नवीन नगरी क्षेत्रों का पिछड़े क्षेत्रों में उदय तथा बड़े नगरों में नगरीय विकास का सांद्रण, 1971-81 के दशक में नगरीकरण के विकेंद्रीकरण तथा 1981-91 के दशक में गांव से नगर प्रवास तथा प्राकृतिक वृद्धि दर में कमी से इसका संबंध था। तीसरा, भारतीय नगरीकरण का संबंध जीवन यापन से है। इसका अर्थ यह है कि नगरों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास नगरी आकर्षण के कारण नहीं, बल्कि रोजगार की खोज के कारण है। आने वाले प्रवासियों का खान पान और आवास व्यवस्था और भी हीन हो जाने पर भी वे रोजगार के लिए नगरों में पड़े रहते हैं। इसका भारत के नगरी जीवन के स्तर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। चौथा, भारतीय नगरीकरण दृश्य में शीर्ष पर बहुमहानगरी पॉली मेट्रोपोलिटियन मेट्रोपोलिटन स्थिति है, जिसका संपूर्ण नगरी योजना पर प्रभुत्व है। संपूर्ण देश में 23 नगरों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी। ऐसे नगर कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र, मद्रास, बेंगलोर, अहमदाबाद, कानपुर, पुणे, नागपुर, लखनऊ, जयपुर आदि हैं। पांचवा, भारत में बड़े नगरों की वृद्धि विस्फोटक तथा लघु नगरों की वृद्धि अवरुद्ध है। 1901 ईस्वी में देश की कुल नगरीय जनसंख्या की 48.8% जनसंख्या 20,000 से कम जनसंख्या वाले नगरों में निवास करती थी, परंतु सन 1951 ईस्वी में ऐसे नगरों की संख्या 2,045 होने पर भी उनमें नगरीय जनसंख्या के मात्र 10.66% लोग निवास कर रहे थे। इसके विपरीत बड़े बड़े नगरों की जनसंख्या का अनुपात, जो सन 1901 ईस्वी में 23% था, वह सन 1951 ईस्वी में बढ़कर 65% से अधिक हो गया। छठा, पूर्वी भारत की अपेक्षा पश्चिमी तथा उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में नगरीकरण अभी भी अधिक है। इसके मुख्य कारण संसाधनों में क्षेत्रीय विभेदन तथा विभिन्न भागों में नगरी विकास के प्रारंभ का विभिन्न इतिहास हो सकता है। सातवां, उत्तर व उत्तर पूर्व में हिमालय के पर्वतीय भाग भारत के सबसे कम नगरीकरण वाले क्षेत्र हैं। यहाँ स्थित हिमाचल प्रदेश राज्य में केवल 8.7% नगरी जनसंख्या थी। इसके उपरांत सिक्किम राज्य का दर्जा था, जहां 9.1% जनसंख्या नगरी थी। इन पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याएं काफी अधिक हैं। यहाँ के सीमित यातायात के साधन तथा भौतिक संसाधनों की कमी कुछ हद तक यहाँ की निम्न नगरी जनसंख्या के कारक हो सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों की पर्यटन की क्षमता तथा शुद्ध पर्यावरण आदि जैसे कारकों के कारण यह सोचा जा सकता है कि आने वाले दशकों में भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में नगरीकरण की प्रक्रिया और भी तेज होगी। आठवां, असम 11%, अरुणाचल प्रदेश 12.8%, बिहार 13.1%, उड़ीसा 13.4% आदि भी निम्न नगरीकरण वाले राज्य हैं। इन सब प्रदेशों में नगरीकरण भारत के औसत नगरीकरण का लगभग आधा ही रहा है। इन क्षेत्रों में भी पर्वतीय भौतिकी, क्षेत्रीय कृषि प्रधानता, सत्ता की अस्थिरता आदि कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण यहाँ पर नगरीकरण जोर शोर से नहीं हो पाया है। नौवां, इसके विपरीत मिजोरम 46.1%, गोवा 41%, महाराष्ट्र 38.7%, गुजरात 34.5%, तमिलनाडु 32.2%, कर्नाटक 30.9% आदि ऐसे राज्य थे जहां पर नगरीकरण उच्च रहा। इन राज्यों के बाद पंजाब, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य थे जहां पर भी नगरीकरण औसतन भारतीय नगरीकरण से अधिक रहा। याद रहे कि भारत में औद्योगिकरण पश्चिमी क्षेत्रों से प्रारंभ हुआ, अतः आज भी भारत में औद्योगिक प्रभुसत्ता पश्चिमी राज्यों की है। दसवां, यदि 1981 और 91 के दशक में भारत के नगरीकरण के क्षेत्रीय प्रारूप में कोई विशेष बदलाव नहीं आया, केवल इतना फर्क जरूर है कि उच्च नगरीकरण वाले दक्षिण भारतीय क्षेत्रों का फैलाव कुछ बढ़ा है और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, हालांकि नगरी जनसंख्या में इस दौरान काफी वृद्धि हुई है, फिर भी इनमें नगरीकरण अभी भी काफी निम्न है। 11वां, जिन क्षेत्रों में नगरी जनसंख्या कम थी वहां 1981-91 के दशक के दौरान नगरी जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक रही, और जहां नगरी जनसंख्या अधिक थी वहां वृद्धि दर कम रही। 12वां, भारतीय नगरी तंत्र में क्रियात्मक तथा क्षेत्रीय एकात्मकता का अभाव है, जिसके फलस्वरूप नगरी क्रमबद्धता एवं नगरी ग्रामीण प्रोफाइल में बहुत से विश्रृंखला एवं असंतुलन है। भारतीय नगरीकरण का शीर्ष एकांगी तथा उसका आधार निम्न है और उसकी मध्यवर्ती कड़ी कमजोर है। 13, भारतीय नगरों की वृद्धि द्वितीय सेक्टर पर आधारित न होकर तृतीय सेक्टर पर आधारित है। हाल में जिला मुख्यालय पर नगरीकरण के अधस्तर निर्माण के फलस्वरूप उन केंद्रों का उद्योगों के लिए आकर्षण बढ़ रहा है। इस प्रकार जिला मुख्यालय केंद्र की बहुकार्यपरकता देश में हो रहे नगरी और औद्योगिक विकेंद्रीकरण की परिचायक है। इन जिला मुख्यालय केंद्रों के कार्यों में विविधता बढ़ रही है, विशेषकर औद्योगिक विकास के साथ नगरीकरण की यह प्रवृत्ति एक स्वच्छ स्वस्थ लक्षण है। अंततः पूर्वी भारत की अपेक्षा पश्चिमी तथा उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में नगरीकरण अधिक है। इसका मुख्य कारण उनके संसाधनों में क्षेत्रीय विभेदन तथा विभिन्न भागों में नगरीय विकास का विभिन्न इतिहास है। भारत में नगरीकरण 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में नगरीकरण प्रक्रिया की गति अभी भी धीमी है, क्योंकि आज भी मात्र 27.8% देश की जनसंख्या नगरों में वास करती है, जो बहुत निम्न है। यह दर पिछले दशक में मात्र 26.1 से बढ़कर 27.8% ही हो पाई है। भारत जैसा देश जहां लगभग 60 वर्षों में से सामाजिक व आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक आर्थिक तंत्र का भी रूपांतरण हो रहा है, वहां भी मात्र 28% जनसंख्या नगरों में वास करती है, कोई संतोषजनक नहीं है। हो सकता है कि वर्तमान वैश्वीकरण प्रक्रिया तथा जनसाधारण में बढ़ता भौतिकवाद भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या को नगरों की ओर आकर्षित करने में सफल रहे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों के संसाधनों पर बढ़ते दबाव से भी कुछ बेरोजगार लोग नगरों की ओर कूच करेंगे, परंतु उसके लिए हमें अपने नगरों में और अधिक रोजगार उपलब्ध कराने होंगे। यदि हम ऐसा कर पाए तो आने वाले दशकों में नगरीकरण प्रक्रिया तीव्र भी हो सकती है, परंतु अभी भी स्थिति असंतोषजनक ही है। देश के नगरीकरण में आज भी क्षेत्रीय विषमताएं हैं। हाँ, केंद्र शासित प्रदेशों में नगरीकरण उच्च है, क्योंकि अधिकतर केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण क्षेत्र काफी सीमित हैं। दिल्ली व चंडीगढ़ में प्रत्येक 10 व्यक्तियों में से 9 से अधिक नगर निवासी हैं। पांडिचेरी में यह अनुपात प्रत्येक 3 में 2 का है। इसके बाद लक्षद्वीप 45.5%, अंडमान व निकोबार 32.6%, दादर व नगर हवेली 26.9% का स्थान है। विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों में मात्र दादर व नगर हवेली एक ऐसा प्रदेश है जहां नगरीकरण देश की सामान्य नगरीकरण की दर से निम्न है। इस प्रकार विभिन्न राज्यों में नगरीकरण स्थिति में क्षेत्रीय विषमताएं थी। गोवा 49.7%, मिजोरम 49.6%, तमिलनाडु 44.0%, महाराष्ट्र 42.7%, गुजरात 37.4%, कर्नाटक 34.0%, पंजाब 33.9%, हरियाणा 28.9%, पश्चिम बंगाल 27.9%। ऐसे राज्य थे जहां नगरीकरण देश की सामान्य स्थिति से बेहतर था। ऐसे मात्र 9 ही राज्य थे। यहां यह भी बताना उचित होगा कि जहां गोवा में प्रत्येक 10 में से 8 व्यक्ति अकृषिय का व्यवसायों में ग्रस्त हैं, मिजोरम में यह अनुपात 10 में से 4 व्यक्तियों का था। बाकी के 7 राज्यों में 50% से अधिक कर्मी अकृषिय व्यवसायों पर निर्भर थे। अर्थात इन सभी राज्यों में अकृषि व्यवसायों पर बढ़ती निर्भरता ही नगरीकरण का मुख्य कारक है। इनमें से अधिकतर राज्यों में 1981-2001 के 2 दशकों में ही इस दिशा में काफी प्रगति हुई है। उदाहरण स्वरूप गोवा में 1981 में नगरवासियों की दर 32% थी, जो कि सन 2001 में बढ़कर लगभग 50% हो गई। मिजोरम में यह वृद्धि 25% से लगभग 50% की थी। तमिलनाडु में इन 2 दशकों में नगर निवासियों का प्रतिशत 33 से बढ़कर 44% हो गया, तथा महाराष्ट्र में यह वृद्धि 32% से 42% थी। हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक व गुजरात में नगर निवासियों की दर में 6 से 7% की वृद्धि हुई। मात्र पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रदेश था जहां के नगरीकरण में पिछले 2 दशकों में कोई वृद्धि नहीं हुई। जिन राज्यों में अकृषि व्यवसायों में वृद्धि हुई है, उनमें नगरीकरण की गति में तीव्रता आई है। दूसरी ओर पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश 9.8%, सिक्किम 11.6%, आसाम 12.9%, त्रिपुरा 17%, नागालैंड 17.2% तथा मेघालय 19.6% तथा पिछड़े राज्यों जैसे बिहार 10.5%, उड़ीसा 15%, छत्तीसगढ़ 20%, उत्तर प्रदेश 22%, ऐसे आदि ऐसे क्षेत्र थे जहां नगरीकरण निम्न था। इन राज्यों में न केवल नगरीकरण निम्न है, बल्कि पिछले 2 दशकों में इनकी नगरीकरण स्थिति में विशेष सुधार नहीं आया। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि इन सभी राज्यों में अकृषि व्यवसायों में संलग्न व्यक्तियों के अनुपात में विशेष वृद्धि नहीं हो पाई। इसके दो मुख्य कारण थे। पहला, इनमें से अधिकतर राज्य पहाड़ी थे जहां यातायात के साधन सीमित थे। दूसरा, प्रशासकीय तंत्र की उदासीनता भी इसके लिए कम जिम्मेदार न थी।